ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 14। लीला ने पूछा, हे देवी, उस वशिष्ठ ब्राह्मण को मरे 8 दिन बीते हैं और हमको यहाँ 60 सहस्त्र वर्ष बीते हैं, यह वार्ता कैसे सत्य जानी है? थोड़े काल में बड़ा काल कैसे हुआ? देवी बोली, हे लीले, जैसे थोड़े देश में बहुत देश आते हैं, वैसे ही काल में बहुत काल भी आता है। अहंता ममता आदि जितना कुछ जगत है सो आभास मात्र है, उसे क्रम से सुनो। जब जीव मृतक होता है तब मूर्छा होती है और फिर मूर्छा से चैतन्यता फुराती है। उसमें यह भासता है कि यह आधार है तो यह आधेय है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा पिता है, इसका मैं पुत्र हूँ, अब इतने वर्ष का मैं हुआ, ये मेरे बांधव हैं, इनके साथ मैं स्नेह करता हूँ, यह मेरा ग्रह है और यह मेरा कुल चिरकाल का चला आता है, मरने के अनंतर इतने क्रम को देखता है। हे लीले, जिस प्रकार वह देखता है वैसे ही यह भी जान, एक क्षण में और का और भासने लगता है। यह जगत चैतन्य का किंचन है, जैसे चैतन्य संवित में चैत्यता होती है वैसे ही यह जगत भी भासता है, और जैसे स्वप्न में दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों भासते हैं वैसे ही आत्मसत्ता में यह जगत किंचन होता है और भ्रम से भासता है, वास्तव में नानात्व कुछ हुआ नहीं है। जैसे स्वप्न में कारण बिना नाना प्रकार का जगत भासता है वैसे ही परलोक में नाना प्रकार का जगत कारण बिना ही भासता है, सो आकाश रूप है और मन के भ्रम से भासता है, वैसे यह जगत भी मन के भ्रम से भासता है। स्वप्न जगत, परलोक जगत और जागृत जगत में भेद कुछ नहीं, जैसे वह भ्रम मात्र है वैसे ही यह भी भ्रम मात्र है, वास्तव में कुछ उपजा नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग कुछ वास्तव नहीं है वैसे ही आत्मा में जगत कुछ वास्तव नहीं, असत ही सत की नाई भासता है, किसी कारण से उपजा नहीं, इस कारण अविनाशी है। हे लीले, जैसे चैतन्य मुखत्व हुए चेतन आकाश रूप भासता है वैसे ही चैत्यता में चेतन आकाश है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग होता है तो वह तरंग कुछ जल से इतर है नहीं, जल ही है, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ इतर नहीं, बल्कि जल में तरंग किनाई भी आत्मा में जगत नहीं। जैसे शशे के सिंह असत है वैसे ही जगत है, कुछ उपजा नहीं है। हे लीले, जब जीव मृतक होता है तब उसको देश काल क्रिया उत्पत्ति नाश कुटुंब शरीर वर्ष आदि नाना रूप भासते हैं, पर वे सब आभास रूप है। जिस प्रकार क्षण क्षण में इतने भास आते हैं वैसे ही कारण बिना यह जगत भासित होता है, तो दृश्य और दृष्टा भी कोई न हुआ। देश काल क्रिया द्रव्य इंद्रिया प्राण मन और बुद्धि सब भ्रम से भासते हैं। आत्मा उपाधि से रहित आकाश रूप है और इसके प्रमोद से जगत भ्रमोदय हुआ है। हे लीले, भ्रम में क्या नहीं होता। जैसे एक रात्रि में हरिश्चंद्र को द्वादश वर्ष भ्रम से भासे थे, वैसे ही यहां भी थोड़े काल में बहुत काल भासा है। दो अवस्था में और का और भासता है, स्वप्न में और का और भासता है, और उन्मत्तता से भी और का और भासता है। अभोक्ता आपको भोक्ता मानता है और भ्रम से उत्साह और शोक को इकट्ठा देखता है। किसी को उत्साह होता है और स्वप्न में मृतक भाव शोक को देखता है। बिछुड़ा हुआ स्वप्न में मिला देखता है और जो मिला सो आपको बिछुड़ा जानता है। काल और है, भ्रम करके और काल देखता है। इसे देखो, यह सब भ्रम रूप है। जैसे भ्रम से यह भासता है, वैसे यह जगत भी भ्रम से भासता है, परंतु ब्रह्म से इतर कुछ नहीं। इसे न बंध है और न मोक्ष है। जैसे मिर्च में तीक्ष्णता है, वैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे थंभे में पुतलियां होती है, वैसे ही आत्मा में जगत है। और जैसे थंभे में पुतलियां कुछ नहीं हुई, ज्यों का त्यों है, और शिल्पी के मन में पुतलियां है, वैसे ही ब्रह्म में जगत है नहीं, पर मन रूपी शिल्पी में जगत रूपी पुतलियां कल्पी है। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों नित्य शुद्ध अज अमर अपने आप में स्थित है। देवी बोली है, लीले, जब जीव को मृत्यु से मूर्छा होती है, तब शीघ्र ही उसको फिर कुछ जन्म और देश काल क्रिया द्रव्य और अपना परिवार आदि नाना प्रकार का जगत भासता है, पर वास्तव में कुछ नहीं। स्मृति भी असत है। एक स्मृति अनुभव से होती है और एक स्मृति अनुभव बिना भी होती है, पर दोनों स्मृति मिथ्या है। जैसे स्वप्न में अपना देह देखता है तो वह अनुभव असत है, क्योंकि वह कुछ अपने मरने की स्मृति से नहीं भासता और उस मरण की स्मृति भी असत है। स्वप्न में कोई पदार्थ देखा तो जागृत में उसको स्मरण करना भी असत है, क्योंकि वास्तव में कुछ हुआ नहीं। इससे यह जगत अकारण रूप है और जो है सो चिदाकाश ब्रह्म रूप है। न कुछ विदुरत की सृष्टि सत है और न यह सृष्टि सत है, सब संकल्प मात्र है। इतना सुन लीला ने पूछा, हे देवी, जो यह सृष्टि ब्रह्म मात्र है तो वह जो विदुरत की सृष्टि है सो इस सृष्टि से संस्कार से हुई है, और यह सृष्टि उस ब्राह्मण और ब्राह्मण की स्मृति संस्कार से हुई है, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सृष्टि किसकी स्मृति से हुई है। देवी बोली है, लीले, वह जो वशिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि है सो ब्राह्मण के संकल्प से हुई है, और ब्राह्मण ब्रह्मा में फुरा है, परंतु वास्तव में ब्रह्मा भी कुछ नहीं हुआ, तो उसको सृष्टि क्या कहूं। यह जितना कुछ सृष्टि है सो उसे ब्राह्मण के मंदिर में ही है, वास्तव में कुछ हुई नहीं, सब संकल्प रूप है और मन के फुरने से भासती है। जैसे जैसे संकल्प फुरता है वैसे ही वैसे होकर भासता है। यह सृष्टि जो तेरे भर्ता को भासी है वह संकल्प से भासाई है, थोड़े काल में बहुत भ्रम होकर भासता है। लीला ने पूछा, हे देवी, जहां ब्राह्मण को मृतक हुए 8 दिन व्यतीत हुए हैं, उस सृष्टि को हम किस प्रकार देखें? देवी बोली, हे लीले, जब तू योग अभ्यास करे तब देखे, अभ्यास बिना देखने की सामर्थ्यता न होगी, क्योंकि वह सृष्टि चिदाकाश में फुरती है। जब तू चिदाकाश में अभ्यास करके प्राप्त होगी तब तुझको वह सृष्टि भास आवेगी। वह जो सृष्टि है सो और के संकल्प में है, जब उसके संकल्प में प्रवेश करे तो उसकी सृष्टि भासे, अन्यथा नहीं भासती। जैसे एक के स्वप्न को दूसरा नहीं जान सकता, वैसे ही और की सृष्टि नहीं भासती। जब तू अंतवाहक रूप हो तब वह सृष्टि देखे। जब तक आदि भौतिक स्थूल पंच तत्वों के शरीर में अभ्यास है तब तक उसको न देख सकेगी, क्योंकि निराकार को निराकार ग्रहण करता है, आकार नहीं ग्रहण कर सकता। इससे यह आधि भौतिक देह भ्रम है, इसको त्याग कर चिदाकाश में स्थित हो। जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश में उड़ता है और जहां इच्छा होती है वहां चला जाता है, वैसे ही चित्त को एकाग्र करके स्थूल शरीर को त्याग दे और योग अभ्यास कर आत्मसत्ता में स्थित हो जा। जब आदि भौतिक को त्याग कर अभ्यास के बल से चिदाकाश में स्थित होगी तब आवरण से रहित होगी और फिर जहां इच्छा करेगी वहां चली जाएगी और जो कुछ देखा चाहेगी वह देखेगी। हे लीले, हम सदा उस चिदाकाश में स्थित हैं, हमारा वपु चिदाकाश है, इस कारण हमको कोई आवरण रोक नहीं सकता। हमसे उदारों की सदा स्वरूप में स्थिति है और हम सदा निरावरण हैं, कोई कार्य हमको आवरण नहीं कर सकता। हम स्व इच्छित हैं, जहां जाया चाहे वह जाते हैं और सदा अंतवाहक रूप है, तो वह जा भी नहीं सकती। हे लीले, अपना ही संकल्प सृष्टि है, उसमें जब तक चित्त की वृत्ति लगी है उस काल में यह अपना शरीर ही नहीं भासता, तो और का कैसे भासे? जब तुमको अंतवाहकता का दृढ़ अभ्यास हो और आदि भौतिक स्थूल शरीर की ओर से वैराग्य हो तब आदि भौतिकता मिट जाएगी, क्योंकि आगे ही सब सृष्टि अंतवाहक रूप है, पर संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासती है। जैसे जल दृढ़ शीतलता से बर्फ रूप हो जाता है, वैसे ही अंतवाहकता से आधिभौतिक हो जाते हैं। प्रमाद रूप संकल्प वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जब वही संकल्प उलट कर सूक्ष्म अंतवाहक की ओर आता है तब आधिभौतिकता मिट जाती है और अंतवाहकता आउदय होती है। जब इस प्रकार तुझको निरावरण रूप उदय होगा तब देखने में और जानने में कुछ यत्न न होगा। साकार से निराकार का ग्रहण नहीं कर सकता, निराकार की एकता निराकार से ही होती है, अन्यथा नहीं होती। जब तू अंतवाहक रूप होगी तब उसके संकल्प सृष्टि में तेरा प्रवेश होगा। हे लीले, यह जगत संकल्प रूप भ्रम मात्र है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। एक अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और द्वैत कुछ है नहीं। लीला बोली, हे देवी, जो एक अद्वैत आत्मसत्ता है तो कलना यह दूसरी वस्तु क्या है, सो कहो। देवी बोली, हे लीले, जैसे सुवर्ण में भूषण कुछ वस्तु नहीं, जैसे सीपी में रूपा दूसरी वस्तु कुछ नहीं, और जैसे रस्सी में सर्प दूसरी वस्तु नहीं, वैसे ही कलना भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। एक अद्वैत आत्मसत्ता जो कि त्यों स्थित है, उसमें नानात्व भासता है, पर वह ब्रह्मात्र है, वास्तव में अपना आप एक अनुभव सत्ता है। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देवी, जो एक अनुभव सत्ता और मेरा अपना आप है, तो मैं इतना काल क्यों भ्रमती रही? देवी बोली, हे लीले, तू अविचार रूप भ्रम से भ्रमती रही है। विचार करने से भ्रम शांत हो जाता है। भ्रम और विचार भी दोनों तेरे ही स्वरूप है और तुझसे ही उपजे हैं। जब तुझको अपना विचार होगा तब भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही विचार से द्वैत भ्रम नष्ट हो जाएगा। और जैसे रस्सी के जाने से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है और सीप के जाने से रूप भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के जानने से आदि भौतिक भ्रम शांत हो जाएगा। जब दृश्य का अत्यंत भाव जान के दृढ़ वैराग्य करिए और आत्म स्वरूप का दृढ़ अभ्यास हो, तब आत्म साक्षात्कार होकर भ्रम शांत हो। और इसी से कल्याण होता है। हे लीले, जब दृश्य जगत से वैराग्य होता है तब वासना क्षय हो जाती है और शांति प्राप्त होती है। हे लीले, तू आत्मसत्ता का अभ्यास कर तो तेरा जगत भ्रम शांत हो जाएगा। भ्रम भी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि देह आदिक भ्रम भी कुछ नहीं हुआ। जैसे रस्सी के जानने से सांप का अभाव विदित होता है, वैसे ही आत्मा के जाने से देहादिक का अत्यंत अभाव हो जाता है। हरि ओम, हरि ओम, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।